नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार, लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को दिया 228 रन का लक्ष्य। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। यशस्वी जायसवाल 173 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। काहिरा में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के स्टार पैरा पावर लिफ्टर विनय ने किया स्वर्ण पदक अपने नाम। और भारतीय बैडमिंटन टीम ने गुवाहाटी में आयोजित विश्व जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। बात करें महिला विश्व कप क्रिकेट की, तो महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 228 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 23वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 65 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश की स्थिति काफी दयनीय लग रही है फिर से एक बार।
हाँ, ये मैच तो बहुत मुश्किल होगा निकालना, क्योंकि बैट्समैन जो उनके जो मेन बैटर हैं वो तो निकल गए हैं और मुझे नहीं लगता यहाँ से न्यूजीलैंड गेम छोड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अगर यहाँ से अगर कोई बहुत ही एक मतलब जिसे कहते हैं बड़ी पारी अगर कोई खेलता है खिलाड़ी, तो ही निकाल पाएगी बांग्लादेश।
ऐसे विजय जी, अमूमन हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम, भारत की टीम या न्यूजीलैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम, जब भी ये इस प्रतियोगिता में इस तरह की टीमें आती हैं तो कहीं ना कहीं शानदार प्रदर्शन करती है। लेकिन वहीं हम अगर बात करें बांग्लादेश जैसी टीम या पाकिस्तान को भी ले ले, तो हर बार क्यों ये जो टीमें हैं वो संघर्ष करती नजर आती हैं ऐसे प्रतियोगिता में?
मेरे ख्याल से दो कारण हैं। एक तो ये, आप देखिए उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको अपने देश में ज़्यादा क्रिकेट खेलने को नहीं मिलता है, पाकिस्तान में भी बांग्लादेश में भी, और टैलेंट की कमी है। कोई आप एक या दो प्लेयर से तो आप टीम नहीं चला सकते हैं, कम से कम आपके पास पांच अच्छे खिलाड़ी तो होने पड़ेंगे, दो बैटर हों, तीन बॉलर हों, या दो बॉलर हों, तीन बैटर हों। सो वो उनका एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, इसीलिए कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाए हैं वो उसके। आप ये देखिए, तुलना में भारत का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कितनी टीमें हैं, कितने ग्राउंड हैं, कितनी फैसिलिटीज़ हैं उनको खेलने के लिए। सो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है
जी। और बात करें अगर हम कल हुए मुकाबले में, तो दक्षिण अफ्रीका ने भी भारत को 3 विकेट से हरा दिया। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़े। इसके बाद लगातार मिले झटकों से शीर्ष बल्लेबाजी क्रम एक बार फिर लड़खड़ाया। भारत ने अपने शुरुआती 6 विकेट महज 102 रन पर ही गंवा दिए। ऋचा घोष और स्नेह राणा की साझेदारी ने भारतीय टीम को संभाला। ऋचा घोष ने 77 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से शानदार 94 रन की पारी खेली, वहीं स्नेह राणा ने 24 गेंदों पर 33 रन बनाए। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 252 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 20वें ओवर में 81 रन पर ही 5 विकेट गंवा चुकी थी। टीम को यहां से जीत के लिए 171 रन की दरकार थी, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने 70 रन और नादिन डी क्लार्क ने नाबाद 84 रन की शानदार पारियों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 7 गेंद रहते ये लक्ष्य हासिल कर लिया। नादिन डी क्लार्क को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका अंक तालिका में चौथे और भारत तीसरे स्थान पर है। भारत का अगला मुकाबला 12 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में मजबूत ऑस्ट्रेलिया से होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
काफी शानदार प्रदर्शन देखने को कम मिला दक्षिण अफ्रीका का। 5 विकेट शुरू में गंवाने के बाद उन्होंने तो इतिहास ही कल रच दिया, जिस तरीके से उन्होंने कल रन चेस किया है।
ऑलमोस्ट नामुमकिन मैच था निकालना, जो स्थिति थी उनकी,
बिल्कुल
वहां से ऐसी बैटिंग करके ले जाना, और कितने भरोसे से खेला उन्होंने। उनकी शॉटों में बहुत दम था, गेंद एकदम बाउंड्री बहुत क्लियर करके गई। और डी क्लर्क, मैं समझता हूँ इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, और आप देखें डी क्लर्क हैं और ऋचा घोष भी हैं जो इतनी पावरफुली शॉट्स मारते हैं
जी।
अगर आप देखें उनको गैप्स उन्होंने ढूंढे अच्छे से शॉट मारते हुए, और जब जब उनको लगा कि रन रेट पीछे गिर रहा है या प्रेशर बढ़ रहा है तो एक वो शॉट ऊंची मार देते थे जहां छक्का मिल जाता था। तो ये उन्होंने दोनों ने, अगर आप देखें दोनों के गेम में ये खासियत थी, एक टीम को हारना था तो ऋचा घोष हारने वाली टीम में रही, पर आगे मैचेस में मैं समझता हूँ टीम मैनेजमेंट शायद सोचे, क्योंकि ऋचा बहुत नीचे बैटिंग करती है, जो उनका गेम है, जो इनका पावरफुल, जो उनके पास रेंज है शॉट्स मारने का वो बहुत बड़ा है, तो ऊपर उनकी जगह बननी चाहिए।
जी, जिस तरीके से कल उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया और गैप्स भी बहुत आसानी से ढूंढ लेती है, ऐसा लग रहा था कि फील्ड प्लेसमेंट उनके दिमाग में अच्छी तरीके से है। लेकिन बात करें अगर हम भारतीय टीम की, तो पिछले दो मैचों में तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे ही मजबूत साउथ अफ्रीका की टीम या अभी 12 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से वो खेलेंगे, तो क्या बार बार हम शीर्ष क्रम को धराशायी होते देख रहे हैं? पिछले मैच में भी 5 विकेट भारत के बहुत जल्दी गिर गए थे, तो बार बार ऐसा प्रदर्शन क्यों देखने को मिल रहा है?
ऊपर देखिए मेन हरमनप्रीत कौर के रन नहीं बन रहे हैं
जी,
जमाइमा के रन नहीं बन रहे हैं, स्मृति मंधाना भी जो उनका रेपुटेशन है उससे तो बहुत नीचे खेल रही है। इन तीनों को ऊपर रन बनाने पड़ेंगे, तभी हरलीन देओल भी जो है कंसिस्टेंट नहीं रही हैं। सो बहुत प्रेशर पड़ता है मिडिल ऑर्डर में, जहाँ पे मुझे लगता है जब तक अच्छी शुरुआत ना हो मिडिल ऑर्डर को बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये भी कल भी अगर आप देखें 102 पे 6
जी,
वहां
जी,
से 251 जो है बनाया, और ऋचा घोष और स्नेह राणा हमेशा कंट्रीब्यूट करती हैं। सो अगर ये पारी, ये इनकी साझेदारी नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता।
बात करें भारतीय पुरुष क्रिकेट की, तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए हैं। आइए सुनते हैं आज के दिन का हाल।
यशस्वी जायसवाल 173 और कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की। केएल राहुल ने सदी शुरुआत करते हुए 38 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए साई सुदर्शन ने 165 गेंद पर 12 चौकों की मदद से 87 रन की पारी खेली। सुदर्शन और जायसवाल ने दूसरे विकेट के लिए 193 रन जोड़े और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। जायसवाल ने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया। गिल और जायसवाल के बीच 67 रन की साझेदारी हो चुकी है। वेस्ट इंडीज की ओर से दोनों विकेट जोमेल वॉरिकन ने लिए हैं। भारतीय टीम के 8 विकेट शेष हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम दूसरे दिन किस मानसिकता के साथ उतरेगी। भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
काफ़ी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला भारतीय टीम का, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो या युवा साई सुदर्शन।
जायसवाल तो कमाल का मैं समझता हूँ एक बैट्समैन मिला है भारत को, और हालांकि उनकी वाइट बॉल क्रिकेट में जगह नहीं बन रही है
जी,
T20 कहें या आप ODI में कहें ज़्यादा, बट टेस्ट खिलाड़ी के रूप में वो उभर के आए हैं। और बहुत साल पहले दिलीप विंग सरकर जो भारतीय कप्तान थे, उन्होंने इसका जिक्र किया था। वो बोलते थे कि हमारे एक लड़का उभर के आ रहा है ये, और मैदान क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता है। अब मैदान क्रिकेट क्या, वो तो दुनिया भर के बड़े बड़े मैदानों में जाके खेल रहा है। और आप देखें 171 डेब्यू पे किया उन्होंने, उसके बाद 3 शतक उन्होंने बनाए 2024 में, 3 अभी तक बना चुके हैं, तो ये चौथा है इस साल का। उनकी कंसिस्टेंसी भी आप देखिए, और खासियत ये है कि बड़ी बड़ी अलग अलग अटैक्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए हैं। और जैसे सुनील गावस्कर जी हैं, वो बहुत उसकी तारीफ करते हैं। रवि शास्त्री ने भी बोला है कितनी बार कि ये खिलाड़ी बहुत लंबी रेस का घोड़ा है जिसे कहते हैं ना, वो है जायसवाल। सो भारत, मैं कहूँगा भारत की किस्मत है कि उनको एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी मिला है, टेस्ट प्लेयर
जी। बात करें पैरालिफ्टिंग की, तो काहिरा में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के स्टार पैरा पावर लिफ्टर विनय ने आज 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने पोलैंड के मिकोलाज कोसियोबिंस्की को हराकर ये पदक अपने नाम किया। विनय ने अपने 3 प्रयासों में 137 किलोग्राम, 142 किलोग्राम और 147 किलोग्राम वजन उठाकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये पदक जीतकर इतिहास ही मानो रच दिया हो। बात करें बैडमिंटन की तो भारतीय बैडमिंटन टीम ने गुवाहाटी में आयोजित विश्व जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में पहला पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। विजय जी कैसे देखते हैं भारतीय टीम का ऐसा प्रदर्शन?
बैडमिंटन में आप देखिए बहुत ही आप लगातार आप तरक्की कर रहे हैं आपको, क्योंकि उनका जो प्रोग्राम है इतना बेहतरीन से प्लान किया हुआ है बैडमिंटन फेडरेशन ने, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, तो उनको लगातार कैंप है, उनके स्काउट्स जाते हैं, खिलाड़ियों को ढूंढते हैं। और सिंधु साइना इन्होंने एक एग्जाम्पल रखा था, तब से खिलाड़ी आते जा रहे हैं। तो जमाने में प्रकाश पादुकोणे थे, पुलेला गोपीचंद हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया, बड़े बड़े खिताब जीते, तो उनका एग्जाम्पल सबके सामने है। और जिसका मुझे लगता है कि बीएआई ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, ये जो आज उनके पास जो टैलेंट है, और कोचेज आप बाहर से कोचेज ला रहे हैं, इन खिलाड़ियों को आप खिलाड़ियों को बाहर खेलने भेजते हैं लगातार, सो उससे बहुत फर्क पड़ा है
जी। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि भारत आज सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को हराएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन हालांकि उन्होंने इतिहास तो खैर आज ऐसा प्रदर्शन करके रच ही दिया है। बात करें जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्कूल खेल की तो जम्मू कश्मीर युवा सेवा और खेल निदेशालय द्वारा आयोजित 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का पहला चरण श्रीनगर में अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट के भव्य समापन के साथ संपन्न हुआ। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
केरल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेघालय को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दिन की शुरुआत 2 सेमीफाइनल मुकाबलों से हुई। पहले सेमीफाइनल में केरल ने मणिपुर के खिलाफ 2-2 की बराबरी के बाद पेनल्टी शूटआउट में जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में मेघालय ने मेजबान जम्मू कश्मीर को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। टूर्नामेंट के हार्डलाइनर मुकाबले में मेजबान टीम जम्मू कश्मीर ने रोमांचक प्रदर्शन करते हुए मणिपुर को 4-3 से हराया। स्पोर्ट्स स्कैन से बातचीत में कई खिलाड़ियों ने अपनी भावनाएं साझा की। जम्मू कश्मीर के युवा सेवा एवं खेल निदेशालय की महानिदेशक अनुराधा गुप्ता ने इस श्रृंखला के सफल आयोजन के लिए अपनी टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन खेलों के सफल आयोजन ने जम्मू कश्मीर में खेल आयोजनों के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है, जो खेल भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। स्पोर्ट स्कैन के लिए श्रीनगर से मैं तारिक राठौर।
बात करें फुटबॉल की तो IFA शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट में कल श्रीनिधि डेक्कन FC का मुकाबला नामधारी FC से होगा। ये मुकाबला पश्चिम बंगाल के कल्याणी स्टेडियम में खेला जाएगा। नामधारी FC कल अपना पहला मुकाबला खेलेगी। विजय जी, ये काफी पुराना टूर्नामेंट है और अब तक कैसे आप देखते हैं?
मुझे बड़ी खुशी है कि ये टूर्नामेंट चल रहा है। अगर आप देखें ड्यूरेंट फुटबॉल है और IFA शील्ड बहुत पुराना खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है
जी। बात करें जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को तो 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जारी है। ये प्रतियोगिता आज से 14 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा एथलेटिक्स संघ और ओडिशा सरकार के संयुक्त सहयोग से हो रहा है। बात करें हम इस तरह के आयोजनों की, श्रीनगर में भी स्कूल स्तर पर ये आयोजन किया गया, फिर एथलेटिक्स की का आयोजन आज भुवनेश्वर में किया जा रहा है, तो सरकार भी एक तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ावा दे रही है, चाहे स्कूल स्तर हो या फिर उसके ऊपर भी।
और खास करके जूनियर स्तर पे जब आप करते हैं तो वहीं से आपका टैलेंट उभर के आता है
जी। और जाते जाते श्रोताओं आपको बताते चले कि बांग्लादेश ने 74 रन पर अपने 7 विकेट गंवा दिए हैं। और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। विजय जी आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।